ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਸਮਾਜ, ਖਾਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਖਾਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ?
ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸਮੇ ਆਜ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਬ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਜੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਵੋ ਸ਼ੇਰੀ ਖੰਡਾ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਥਾ, ਤੋ ਸੋਨੀਪਤ ਮੇਂ ਸ਼ੇਰੀ ਖੰਡਾ ਗਾਓਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਖੰਡਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਹੀ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੇਰੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਵਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਵੋ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਵੋ ਕੈਂਪ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸੋਨੀਪਤ ਮੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਗਾਓਂ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਉਨਕਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੇ ਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀਆ ਥਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਦੇਖੇਂ ਤੋ ਜੈਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੀ, ਉਸਕੋ ਦਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ NCR ਕੇ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੇ ਕੁਛ ਗਾਓਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੰਡੋਠੀ ਹੈ, ਆਸੋਦਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਮੇਲੇ ਵਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨ ਮੇਲੋਂ ਮੇਂ ਲੱਖੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸਮੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਚ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕਾ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਡਲ ਪਾਏ ਔਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ 1947 ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਕਾ, ਉਸਮੇਂ ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਸੋਨੀਪਤ ਜੱਜਰ ਕਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਓਲਡ ਰੋਹਤਕ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ
ਜੀ,
ਵਹਾਂ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੇ ਕਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਥਾ ਨਾ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਏ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਲੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਏਜ ਕੇ ਹੈ ਵੋ ਸਭੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਲੇਤੇ ਥੇ, ਵੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਵੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਜੋ ਦਵੀ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇਂ ਤੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਤੋ ਵੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਦਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 800 ਏਕੜ ਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਾ, ਤੋ ਵੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਥਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਸੈਂਟਰ ਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ। ਜੀਂਦ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਜੀਂਦ ਸੇ ਆਗੇ ਆ ਜਾਏ ਲਾਖਨ ਮਾਜਰਾ ਮੇਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਰੋਹਤਕ ਮੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਯੇ। सांपला में भी जहाँ सर छोटू राम जी पैदा हुए हैं वहाँ भी गुरु तेग बहादुर जी आए थे, और फिर आगे दिल्ली में हम जाएँ तो उनका शहीदी स्थान है ही। तो मतलब पूरी बेल्ट है हरियाणा में जहाँ मतलब कि गुरु हमारे आए और मोर्चा वहाँ लगाया गया। तो वो इसीलिए लगाया गया कि वहाँ संभावना थी, वहाँ लोग तैयार बतैयार थे, लेकिन उस हिस्ट्री को जो है हमने भुला दिया। एक बीच का एक ऐसा दौर आया कि जब उस हिस्ट्री से हम लोग दूसरी तरफ मुड़ गए, अदरवाइज तो शुरू से ही हिस्ट्री में जो है हमारा सिक्खी की तरफ रुझान रहा है। बच्चे भी जो है वो कड़े पहनते थे जी, मतलब कि जो बच्चा है हरियाणा में वो उसको कड़ा जो है वो पहनाया जाता था। और बाद में फिर स्कूलों में जो है ना एक ऐसा भी दौर आया 84 के बाद कि वो ये कहा कि भाई कड़ा तो जो है ना एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार देगा, तो टीचर ही कड़ा उतरवा लिया करते, अदरवाइज कड़ा भी हमारे ट्रेडिशन में आ चुका था। अच्छा, हरियाणा में जो पगड़ी है ना उसको खंडवा कहते हैं, बुजुर्ग भाई खंडवा बांध रखा है, तो वो खंडवा जो है ना वो वर्ड भी जो है वो खंडा से आया है, खंडा से खंडवा शब्द बना है जो पगड़ी हरियाणा के बुजुर्ग बांधते हैं। तो ये है भाई साहब, किसान मूवमेंट जब चला तो किसान मूवमेंट में जो हमारे जो ब्लड में थी सिक्खी वो दोबारा से ऊपर आ गई, वो दोबारा से नजर आनी शुरू होगी कि जो चीज़ दब गई थी अब कब तक दबाएंगे उस चीज़ को। जो फिनोमिना है, जो नेचुरल फिनोमिना है, जो चीज़ हमारे ब्लड में है उसको कब तक हम लोग दबा के रखेंगे। तो जब किसान मूवमेंट चला तो जब दोबारा से एक्सपोज़र हुआ हरियाणा का, पंजाब के लोगों को भी पता लगा कि हरियाणा में भी सिक्खी की संभावना है या सिख बेसिकली सिख हैं ये लोग, तो फिर पंजाब वालों को पता चला, पंजाब के सिख सरदारी को पता चला कि यहाँ भी बड़ी पॉजिटिविटी है। अदरवाइज़ तो 84 के बाद जो है हमारे सिख कम्युनिटी का एक्सपोज़र विदेशों में तो हुआ लेकिन अपने ही कंट्री में एक्सपोज़र कम हो गया था, वो सेग्रीगेट हो गए थे, खुडे लाइन एक तरीके से सिख लगा दिए गए थे, पंजाब तक ही सीमित हो गए थे। तो
जी
जिसकी वजह से उनका हरियाणा की तरफ या वेस्ट यूपी की तरफ, राजस्थान की तरफ एक्सपोज़र कम हो गया था, वो किसान आंदोलन में दोबारा से पता चला।
हरियाणा दे विच कले जाट ये सोच रहे ने जां जाटा तो अलावा भी छत्ती बरादरी ने हरियाणा दे विच वो भी यही सोच रहियां ने जो तुसी कह रहे हो।
नहीं जी, सारी बिरादरियां हैं, मतलब सिक्खी के लिए तो पॉजिटिविटी तो सभी में है, लेकिन जाट जो है एक बड़ी कम्युनिटी होगी, तो जाट एक तरीके से ये मान लो कि इंजन हो गया हरियाणवी सोसाइटी का। तो इंजन जिस तरफ चलेगा तो बाकी जो है रेल भी उसी तरफ चलेगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट ईयर जो है ये कोशिश की थी हिंदुत्वा की फोर्सेस ने कि मेवात में दंगा करवा दिया जाए, लेकिन उसमें जाट जो है उसने दंगे में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, उसने कहा नहीं जी मेव हमारे भाई हैं। तो जाट जब दंगों में शामिल नहीं हुए तो हरियाणवी जो अदर कम्युनिटीज थी वो भी दंगों में शामिल नहीं हुई, वो भी रुक गए उस दंगे में शामिल होने से। तो इस करके जाट जो है वो जो है अगर मान लो उसका सिक्खी पासे रुझान है तो हम समझ सकते हैं फिर पूरे हरियाणा का ही रुझान है, या अगर जाट सिक्खी की तरफ चलना शुरू कर देगा तो अदर कम्युनिटीज भी कर देंगी। या हम ये समझें कि जो दयानंद सरस्वती था उसने जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया उस जमाने में वो जाटों को टारगेट किया, जहाँ सत्यार्थ प्रकाश का जो एडिशन आया सेकंड एडिशन 1884 में आया सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन सत्यार्थ प्रकाश का 1875 में आया था जब दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज बनाया था। तो उसमें दयानंद ने लिखा है कि भाई जब जाट जी जैसे महापुरुष, जहाँ उसने गरुड़ पुराण का खंडन किया है, तो लिखा है भाई जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो पोप लीला संसार में ना चले। तो मतलब जानबूझ के दयानंद सरस्वती ने भी जाट को ही मतलब कि पकड़ा, किस लिए पकड़ा कि भाई जाट अगर सिक्खी में जाने से रुक गए तो फिर सारी कम्युनिटीज रुक जाएंगी, और जाट अगर सिक्खी की तरफ चल पड़ा तो फिर सारी कम्युनिटीज भी चलना शुरू कर देंगी। तो इतना इम्पैक्ट जो है जाट कम्युनिटी का हरियाणवी सोसाइटी में है। तो अगर जाट सिक्खी की तरफ चलना शुरू कर देगा ना तो दूसरी कम्युनिटीज भी सिक्खी की तरफ चलना शुरू कर देंगी।
जिस तरीके दे नाल हरियाणे दे विच खा पंचायतां दा जो ढांचा जिवें तुसीं कहिंदे हो वी खालसा पंचायतां ने ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਟ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ?
देखो भाई साहब, हम ये देखें भाई, खा पंचायत है क्या। जैसे गांव में एक तो अपना परिवार होता है आदमी का, फिर परिवार के बाद जो है उसका होता है कुनबा, कुनबे के बाद थोड़ा सा कुनबा और बड़ा हो जाए, भाई दादे परदादे इकट्ठे रहे हों तो एक ठोड़ा हो जाता है गांव में, एक ही गोत का गांव है मान लो, तो उसमें एक ठोड़ा हो गया तो वो एक फिर गांव हो गया, तो गांव के बाद गुवांड हो गया, मतलब पड़ोसी गांव हो गया। तो ये एक है ना नेचुरल एक फिनोमिना है, ये किसी ने बनाया नहीं है। मतलब जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे जी ये प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटर है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये उसका फाइनेंस संभालेगा, कोषाध्यक्ष है, तो वो तो है एक कृत्रिम अननेचुरल चीज कि भाई हम किसी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, किसी को जनरल सेक्रेटर बना रहे हैं, ये तो एक अननेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन परिवार तो ऑर्गेनिक है ना, फिर गांव भी ऑर्गेनिक है, गुआंढ भी ऑर्गेनिक है, सदियों से बसे आए हैं चीज़ें। तो हरियाणवी सोसाइटी में क्या है कि गांव गुआंढ और गोत में शादी नहीं हो सकती ना, हम अपने गाँव में शादी कर सकते क्योंकि गाँव की बेटी हमारी बेटी है, गाँव की बहन हमारी बहन है, ना गुआंढ में शादी कर सकते, भाई पड़ोसी गांव की लड़की भी हमारी बहन है, पड़ोसी गांव की बेटी भी हमारी बेटी है, ना अपने गोत में कर सकते शादी। तो अब इन चीज़ों को चेक करने का काम जो है ना, इस सोसाइटी के ताने बाने को जो चेक करने का काम है, वो खा पंचायतें करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गांव की गांव में शादी हो जाए तो ताना बाना समाज का बिगड़ जाए, या गुआंढ में शादी होने लग जाए तो सोसाइटी का ताना बाना बिगड़ जाए। तो उसमें एक जुडिशरी की भूमिका जो है वो खा पंचायतें निभाती हैं, और भी सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स के काम होंगे वो भी खा पंचायतों के माध्यम से सोसाइटी करती आई है। खाप का मतलब है कि फर्ज करो कि जैसे हमारा दुअन गोत है, तो हमारे गोत के मान लो 80 विलेजेस हैं, 80 गांव हैं, तो अब 80 गांव की एक खाप बनेगी दुअन खाप।
जी
अब मान लो हमारे किसी को कोई दिक्कत आएगी तो वो अपनी पंचायत में अपनी बात रख सकता है, या कोई मैट्रिमोनियल इस तरीके के इश्यूज आएंगे कि भाई गांव की लड़की गांव में ही शादी कर लेगी तो वो भी दुअन पंचायत में रखी जा सकती हैं। कुछ तो गोत के आधार पर खाप पंचायतें हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे दहिया खाप का फैसला है कि वो केवल जाट ही दहिया उसको मानेंगे, वो दहिया खाप का फैसला जो है ना, वो दहिया गोत के जो दूसरे बिरादरी के भी लोग हैं, जैसे चमार गोत, चमारों में भी दहिया हैं, या हमारा जो गोत है वो बैरागियों में भी है, मैंने जो है अपना गोत नाइयों में भी हमें मिला, और जो है राजपूतों में भी दुअन है, तो दैया जो है वो चमारों में भी है, दैया कुछ मुसलमानों में भी है। तो दैया गोत ने एक फैसला लिया था कि भाई दादी जो है ना उसका गोत में शादी हो सकती है। पहले ये था भाई दादी का गोत भी छोड़ना पड़ता था, उस दादी के गोत में भी शादी जो है नहीं हो सकती थी, लेकिन एक फैसला आया दैया पंचायत ने किया, भाई दादी के क्योंकि बड़ा गोत हो गया वो, उसके गांव ज़्यादा हो गए तो शादी करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने कहा भाई कम से कम दादी का गोत अब छोड़ दो, दादी के कोई करना चाहे तो दादी के गोत में भी शादी कर सकता है। तो वो जो फैसला था वो फिर जो चमार दैया है उसके ऊपर भी वो उस फैसले से इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं वो, कि वो भी फिर जो है कहीं अगर दादी के गोत में शादी करनी हो, कोई चमारों में कोई दैया हो, तो वो भी कहेगा जी दैया पंचायत का फैसला है ये। तो वो ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल जाटों के ऊपर ही है लागू चीज़, वो पूरी सोसाइटी जो है उसके ऊपर लागू होती हैं ये चीज़ें। और जब दैया गोत की पंचायत होती है तो उसमें दैया गोत के जितने भी बिरादरी के लोग होते हैं, चाहे वो चमारों में हो या किसी अदर बिरादरी में, वो भी आते हैं जी। अच्छा, अदर कम्युनिटीज़ में भी है जो है खापे, जैसे झज्जर खाप है उसमें ब्राह्मण ही उसका जो है वो प्रेसिडेंट उस खाप का रहा है, तो वो तो सरोसाजी जो है ना वो खाप है, और उसमें 36 बिरादरियां शामिल होती हैं। अच्छा, कुछ रीजनल हैं खापें, जैसे 24 गांव हो गए तो उसको 24 ही बोल देते हैं, जैसे मैम 24 ही होगी, कुछ 84 गांव हो गए तो उसको 84 बोल देते हैं, 360 होगी जैसे मैरोली 360, दिल्ली की जो खापें हैं वो 360 है, तो मान लो कोई फैसला हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो गांव लेगा फैसला, गांव से नहीं बात बनेगी तो 24 गांव इकट्ठे हो जाएंगे, 24 से बात नहीं बनेगी तो 84 इकट्ठे हो जाएंगे, 84 से नहीं बनेगी 360 इकट्ठी होगी। अच्छा, कोई दिक्कत आएगी, मान लो कोई बाहर से कोई आक्रमणकारी आ गया, मान लो अब्दाली आ गया, तो अब्दाली से मुकाबला करना होगा तो वो 360 गांव इकट्ठे होंगे, वो पर्ची फाड़ी जाएगी, पर्ची फाड़ने का मतलब है न्योता दिया जाएगा कि 360 गांव इकट्ठे हो जाओ, तो 360 गांव के फिर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो फिर फैसला लेंगे भाई अब्दाली से हमको कैसे जो है मुकाबला करना है। तो ये डिफेंस के लिहाज से भी जो है ये फैसले खा पंचायतें लेती आई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि दिल्ली एनसीआर में खापें ज़्यादा हैं, तो दिल्ली एनसीआर में खापें ज़्यादा हैं तो दिल्ली एनसीआर की ज़मीन जो है वो महंगी होगी, तो अब कॉरपोरेट को ये हुआ कि भाई इस ज़मीन को किसी तरीके से कब्जाया जाए, तो उसको कब्जाने के लिए, उस ज़मीन को एक्वायर करने के लिए ये ज़रूरी था कि खापों को बदनाम किया जाए, जैसे तालिबान को बदनाम किया, सिखों को भी इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की कि भाई ये तो एंटी नेशनलिस्ट हैं, एक मीडिया में प्रोजेक्शन दी गई। तो अब आप देखेंगे कि जो अरावली हिल है ना, अरावली से जो लगते हुए जो जो एक पट्टी है, जो बेल्ट है, उसमें मेवों की ज़मीन महंगी हो गई है, क्योंकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन गया है, सड़क बन गई है दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर, तो उस कॉरिडोर की वजह से जो है वो महंगी हो गई है ज़मीन मेवों की। तो ये चाह रहे थे कि भाई मेवात को बदनाम किया जाए, मेवात में दंगे हो जाएं, तो दंगे होंगे मेवात, मुसलमान बदनाम होगा वहाँ का, जो बदनाम होगा उसकी ज़मीन को जब कॉरपोरेट हथियाएगा तो जब उनके ऊपर मार पड़ेगी तो लोगों की सिंपैथी नहीं रहेगी उनके साथ। तो इस वजह से दिल्ली एनसीआर में जो खापें ज़्यादा मात्रा में हैं, ज़्यादा उनकी तादाद जो है, और उसकी वजह भी ये है कि भाई दिल्ली के ऊपर हमले होते थे, तो जितने भी अटैक हुए हैं वो दिल्ली टारगेट होता था, जो भी बाहर के जो आक्रमणकारी आते थे, तो उन दिल्ली को डिफेंस देने के लिए, दिल्ली के चारों तरफ एक किलेबंदी करने के लिए, तो ये खापें जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड की गई थी कि दिल्ली को सेफ रखा जाए। तो इस वजह से दिल्ली जो है वो दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ ज़्यादा खापे हैं। तो अब खापों को केवल ये कहना कि भाई खापे तो केवल एक जाट बिरादरी की है, या खापे तो जो है तालिबानी फैसला करती हैं बिना हमारे कल्चर को समझे, वो इसलिए बदनाम किया गया पिछले दशक में, मतलब लास्ट, अब तो नहीं इतना कर रहे खापों को टारगेट, अब ये टारगेट कर रहे हैं मेव मुसलमानों को, तो वो इसलिए किया गया भाई दिल्ली एनसीआर की ज़मीन को कब्जाया जाए, और वो काफ़ी ज़मीन को कब्जाने में ये कामयाब भी हुए, जैसे बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन जो है वो झज्जर में अंबानी के पास आ चुकी है, रोहतक में भी जो है IMT बनाने के नाम पर और सोसाइटीज़ बनाने के नाम पर ज़मीन इन्होंने काफ़ी कब्जा ली है कॉरपोरेट ने। तो खापों को तो जो है एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक ढांचा था खाप का, खाप किसी ने बनाई नहीं, ये तो एक बनता चला गया, जैसे परिवार किसी ने नहीं बनाया भाई, गांव एक नेचुरल फिनोमिना
एक
था।
कास्टिज्म दे उत्ते खड़दियां ने जां ट्राइबल्स ने की है खापां दा मतलब ये ढांचा चलाउण दा ढांचा की है ना जो
नहीं, ये बेसिकली तो भाई साहब देखो ये ट्राइबल ही हम लोग हैं, आप देखें अफगानिस्तान में भी ट्राइब्स हैं, चाहे पठान हो गए, फिर आप अफगानिस्तान से बाहर चले जाओ तो वहाँ कुर्द हैं, और जो है सद्दाम हुसैन की अलग ट्राइब थी, तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो ट्राइब्स हैं। लेकिन जहाँ इंडिया के अंदर जहाँ ट्राइबों का हिंदुत्वीकरण हुआ, जहाँ ट्राइब्स का हिंदुआइज हुई ट्राइब, वहाँ वो ट्राइब जो है वो कास्ट में तब्दील हो गई, कास्ट में वो बदल गई। ट्राइब का मतलब ये होता है ट्राइब, कोई भी ट्राइब दूसरी ट्राइब से ऊंचा नीचा करके नहीं देखती, ट्राइब की ये खास बात होती है। जैसे कोई बाजवा होगा, बाजवा संधू से ऊंचा नहीं होगा, संधू जो है वो गिल से ऊंचा नहीं होगा, गिल जो है वो दैया से ऊंचा नहीं होगा, दैया जो है वो मलिक से ऊंचा नहीं होगा, मलिक दुवन से ऊंचा नहीं होगा। हालांकि बेशक कोई जो सब कास्ट है, कोई गोत है, उसकी संख्या थोड़ी हो, लेकिन थोड़ी होने के बाद भी कोई ये नहीं कहेगा ऊंचा नीचा है, या जो है कोई जाट है वो किसी चमार से ऊंचा नहीं होगा, चमार किसी सुनियार से ऊंचा नहीं होगा, मतलब ये हम लोग बेसिकली एक ट्राइबल सिस्टम में सारे बराबर थे। हालांकि
नहीं मतलब ये
ट्राइब
जात जात पात वाला ढांचा है नहीं विच कम
नहीं,
नहीं
ट्राइब
करता
में नहीं था, लेकिन ट्राइब के अंदर जब हिंदुइज्म का कॉकटेल बना, जब ट्राइब के जब ट्राइब्स हिंदुआइज्ड हुई तब उनके अंदर ये ऊंच नीच आ गई। जब ट्राइब्स का हिंदुत्व के साथ मेल हुआ ना तब वो कास्ट बन गई और फिर उनके अंदर ऊंच नीच आ गई। ट्राइब्स में जब हिंदू का जब इंजेक्शन लगाना, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो पुराने अंग्रेजों के दस्तावेज हैं जो कास्ट के सेंसस अंग्रेजों के, उसमें ये बात बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है कि जाट एक ट्राइब है लेकिन हिंदुत्व के साथ आने की वजह से ये एक कास्ट में तब्दील हो गई। तो हमारा जो खापों का जो सिस्टम है ना, ये ट्राइबल सिस्टम है हमारा, और ये आज से नहीं चला हुआ, ये सदियों से ही चला आया है। और केवल इंडिया में ही नहीं है, आप देखेंगे ना अफगानिस्तान में भी जिरगे हैं, तो अफगानिस्तान में भी है ये सिस्टम जो है, क्योंकि एक नेचुरल जो है ये ट्राइबल सिस्टम है। इसके थ्रू इकट्ठे बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, इकट्ठे बहुत जल्दी हो जाते हैं, और सोसाइटी की जो सेंक्टिटी है, सोसाइटी का जो ताना बाना है वो बरकरार रहता है। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट जो बनाया वो साउथ इंडिया के ब्राह्मणों ने बनाया। अब उनको जो है वो पूरे इंडिया की जानकारी नहीं थी, उनको तो अपना साउथ इंडिया के जो रीति रिवाज थे वही उनको लगा कि ये पूरे भारत के रीति रिवाज हैं। तो साउथ इंडिया में क्या है कि अपने गोत में भी शादी हो जाती है। साउथ इंडिया में तो हो सकता है कि मामा की लड़की से भी शादी कर लेते हो वो जो हिंदू हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ इंडिया का जो हमारा जो ट्राइबल जो स्ट्रक्चर था जो शादी विवाह का, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपना एक हिंदू मैरिज एक्ट बना के उसको सभी हिंदुओं के ऊपर लाद दिया, सभी हिंदू हिंदुओं के ऊपर उन्होंने उसको इम्पोज कर दिया। तो अब होता क्या है कि मान लो कोई लड़का लड़की गाँव में शादी कर लेते हैं, तो अब गांव के लिहाज से तो वो बात गलत है, खाप पंचायत के हिसाब से भी वो बात गलत है, हरियाणवी सोसाइटी के हिसाब से भी गलत है, लेकिन उनको फिर प्रोटेक्शन जो देती है ना वो स्टेट देती है, क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन देती है जी हिंदू मैरिज एक्ट है। तो इस तरीके से जो खाप मैरिज का जो सिस्टम है वो हिंदू मैरिज एक्ट से सीधा टकराता है। खापों ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पटिशन दायर कर रखी है, लेकिन अब बात यह है कि भाई अब ये कॉरपोरेट ही सब चीज़ों को चला रहा है जी, तो फिर इनकी सुनवाई वहाँ कम है। अदरवाइज तो हमारा जो मैरिज का सिस्टम है वो हिंदू मैरिज सिस्टम से मेल नहीं खाता, हरियाणवी जो मैरिज सिस्टम है। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा अलग मैरिज सिस्टम हो, उसको कानूनी मान्यता मिले, जिसमें गाम कुवांड और गोत में शादी ना हो, लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हम सीधा टकरा रहा है हरियाणवी सोसाइटी से। और जब टकरा रहा है तो मीडिया जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दे रही है कि जी हिंदू मैरिज एक्ट बड़ा है, जबकि वो ये नहीं देख पा रहे कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट जो है, या देखना नहीं चाह रहे क्योंकि बदनाम करना है, कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट तो साउथ इंडिया के कुछ एक ब्राह्मणों ने अपने कल्चर के हिसाब से बनाकर और ये पूरे इंडिया पे इम्पोज किया है। तो खापों को जो बदनाम कर रहे हैं कि ये केवल एक कास्ट की है, ये तालिबानी है, या फैसले ठीक नहीं करती, हालांकि ये बात भी ठीक है, देखो कमजोरी तो आई है, हर सोसाइटी में कमजोरी आई है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना हमारा वो उसमें कोई कमी नहीं है। मान लो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो दर्शन है उसमें तो कोई कमी नहीं है ना, उस चीज में तो कोई कमी नहीं है, सिख सिद्धांतों में तो कोई कमी नहीं है ना। हो सकता है कि एक आध कोई माड़ा मोटा सिख हो जाए, लेकिन बेसिक जो सिद्धांत है उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो गांव को आंड गोत में शादी नहीं होनी चाहिए, इस सिद्धांत में कोई कमी नहीं है गांव के लिए, सोसाइटी के हिसाब से। लेकिन अब इसको बदनाम कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से बदनाम कर रहे हैं, तो ये है इसमें भाई साहब। खापें सरोसा जी है, सरोसा जी जो है बात करती हैं, खाप किसी का ऐसे नाजायज पक्ष भी नहीं लेती।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਉੱਥੇ?
देखो, एक तो महाराजा हर्षवर्धन जो हुए ना वो बेसिकली बुद्धिस्ट राजा थे, तो महाराजा हर्षवर्धन जो थे उन्होंने इसको दोबारा से खापों को मतलब कि एक तरीके से जैसे अब किसान मूवमेंट में दोबारा सिक्खी प्रफुल्लित हुई है, तो उन्होंने खापों को दोबारा से रिवाइव किया था 7th सेंचुरी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे हरियाणा में है ना, यहाँ बहुत से गांव हैं जिनके नाम के पीछे खालसा है, जैसे बड़ खालसा ही फॉर एग्जांपल है। तो दिल्ली एनसीआर में भी बहुत गांव हैं जिनके नाम के पीछे खालसा है। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जब आए ना, तो उन्होंने यहाँ जो मुजारे थे उनको ज़मीनें दी, और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि भाई जो मुजारे थे उनको भी उन्होंने ज़मीनें दी, जो ज़मीनें हमने जीती, जो ज़मीनें हमने लड़ाई में जीती, या जिन ज़मीनों को बोया हमने और जिनका जो है रेवेन्यू देते थे मुगलों को, तो वो ज़मीनें जब वापस हमें मिली, तो वहाँ जो है ना खालसा का मतलब है भाई शुद्ध, और पंचायत खालसा पंचायत। तो ये जो वर्ड जो दोबारा से आया है ना खाप का, तो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से इसका ताल्लुक जुड़ता है जी। उन्होंने एक तरीके से रिवाइवल ऑफ जो है हमारी पंचायत्स जो हुई है, दोबारा मोहर लगी है इन पंचायत्स के ऊपर, तो वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर जो है जाके इतिहास टिकता है। तो अब इसमें और इतिहासकार अगर रिसर्च करेंगे ना बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का क्या प्रभाव रहा हमारे इलाके में, तो वो चीज़ें और भी इसमें तथ्य सामने आ सकते हैं। ये एक रिसर्च का भी सब्जेक्ट है।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਾਟ ਵਰਸਿਸ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
देखो भाई साहब, हरियाणा जो है ना उसमें जो हमारा जो ट्राइबल जो पूजा का जो तरीका रहा है पूजा करने का, वो रहा है कि हम यहाँ पंजाब में जठेरे कह देते हैं, हरियाणा में दादा खेड़ा कह देते हैं। भाई जिस दादा ने वो खेड़ा बसाया था, कुछ एक जगह दादा भैया भी कह देते हैं। तो ये दादा खेड़ा कह लो, दादा भैया कह लो, और जठेरे कह लो। तो ये पूजा पद्धति का जो तरीका है ना, ये हरियाणा में रहा है। उसमें दो ईंट लगा दी और ये मान लिया भाई ये हमारे पुरखों का स्थान है। तो जैसे किसी की शादी हुई तो आशीर्वाद लेने जाएंगे तो वहाँ भी एक दिया जलाए आएंगे, दो लड्डू वहाँ भी रखाएंगे, या कोई और अच्छा कार्य करना हो तो वहाँ दादा खेड़ा पे जाके धोक मार ली। ये सिंपल सा तरीका हरियाणवी या हमारे ट्राइबल लोगों का रहा है।
ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
इस
ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ।
तरीके से पाठ पूजा करते रहे हैं वो, और वो यहाँ यानी मतलब कि वो पंजाब में भी जठेरे हैं, वो मतलब पूरी हमारी ट्राइबल बेल्ट में रहा है जी वो। तो अब क्या है कि जो दादा खेड़ा है ना गांव का, वो मोबाइल देवता नहीं है। मान लो कोई आदमी कनाडा गया तो दादा खेड़ा को तो उठा के ले जा नहीं सकता, दादा खेड़ा तो वहीं रहेगा जो उसका गाँव है, जो उसका स्थान है। अच्छा कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया दादा खेड़ा को, तो वो उठा के वहाँ से ले जा नहीं सकता कि भाई दादा खेड़ा को वहाँ भी विराजमान कर लेंगे। तो अब हम लोग अपने रूट से कट गए, मान लो ऑस्ट्रेलिया चला गया कोई हरियाणा का लड़का, या कनाडा चला गया, तो वो अपने दादा खेड़ा से तो कट गया। अब उसको कोई ना कोई तो जगह चाहिए ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया एक स्पिरिचुअल, कि जहाँ वो धोख मार सके, जहाँ वो हाथ जोड़ सके। तो जैसे ही वो विदेश में गया उसको गुजराती कैच कर लेते हैं, उसको जो है हिंदुत्वा की जो फोर्सेस हैं वो कैच कर लेंगी। वो कहेंगे जी कि आप जो है ना जगन्नाथ मंदिर में चलो, आप जो है किसी हनुमान जी के मंदिर में चलो, या आप किसी और जो है मंदिर में चलो। भाई हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारा किसी से कोई विरोध भाव नहीं है, लेकिन वो जो है एक बार अपने मूल जगह से टूट कर फिर वो हिंदुत्वा के जो शहरी देवी देवता है ना उनकी शरण में चला जाता है। फिर जैसी संगत हो जाएगी वैसी रंगत हो जाएगी। फिर वे लोग हमारे हरियाणवी लोगों को कोशिश करते हैं सिखों के खिलाफ भड़काने की, और सिखों के खिलाफ भड़काते हैं। अच्छा इसमें एक तो ये है, दूसरा इसमें ये है कि कुछ ट्रेंड भी हैं लोग, कि ये भी हमें सुनने में आया था कि कुछ एक हरियाणवी लड़कों को यूपी में ले जाके उनको ट्रेनिंग दी गई कि भाई वो पैरोल के ऊपर हैं, मत कि एक पेरोल के ऊपर हैं सॉरी, कि वो विदेश में जाकर जो है वो सिखों के साथ झगड़ा करें। अदरवाइज जो बंदा नौकरी पेशे के लिए गया है, जो अभी गया ही गया है विदेश में, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी के साथ झगड़ा करेगा। क्योंकि हमारे भी साथी हैं जो हरियाणा के जो बाहर रह रहे हैं, वो काम से काम मतलब रखते हैं जी वो, और वो काम से काम ही उनकी मजबूरी भी है क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है वहाँ पर। तो इतनी हिम्मत जो बाहर जाके सिखों के साथ झगड़ा करने की जो हिम्मत है, वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें ये भी इन्फॉर्मेशन इनपुट मिले हैं कि वो यूपी में ले जाके कुछ एक हरियाणवी लड़कों को ये बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, उनको पैसा मिलता है इस चीज़ का कि वो विदेशों में सिखों के साथ लड़ें। अच्छा, दूसरा हमारे जो करनाल बेल्ट है हरियाणा में, वहाँ पे एक रोड बिरादरी है, वो रोड बिरादरी में भी हालांकि सिक्खी का प्रभाव रहा है, लेकिन उन रोड बिरादरी को जो है वो शुरू से ही इनकी कोशिश रही है कि भाई इस बिरादरी को हिंदुत्व के फोल्ड में ले लिया जाए, क्योंकि छोटी बिरादरी है वो, तो उनको हिंदुत्व के फोल्ड में लेकर जो है उनको एंटी सिख बनाया जाए। तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है हिंदुत्व की फोर्सेस ने शुरू से ही किया, जैसे उनको एक अलग आइडेंटिटी देने की भी कोशिश हुई करीबन 21 साल पहले कि भाई जो मराठे आए थे महाराष्ट्र से तो वो यहीं बस गए थे, वो ये रोड हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनके गोत भी हमसे मिलते हैं जाटों से, और इनकी जो बोलबाणी है वो भी हरियाणवी है, लेकिन इनको जो है एक फॉल्स आइडेंटिटी देने की कोशिश हुई कि रोड जो है ना ये मराठे हैं। लेकिन ये फिनोमिना भी ज़्यादा नहीं चला, रोड़ों के लड़कों को समझ में आने लग गई कि यार तुम तो हरियाणवी हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि करनाल के अंदर जो सिख बाहर गए सिख बेल्ट से, तो वो जो लाइन सिखों ने खींची, उस लाइन को फॉलो करके रोड़ों के लड़के भी विदेशों में चले गए। लेकिन जब विदेशों में गए तो जो इनके ऊपर शुरू से ही एक्सपेरिमेंट होता रहा कि भाई इनको हिंदुत्व की लाइन में लाया जाए, या जो गुरुकुल्स हैं वो आप देखेंगे कि वो इसी बेल्ट में ज़्यादा हैं, जज्जर में सॉरी आपके जो है कुरुक्षेत्रा में है, या जो रोड़ों की बेल्ट में करनाल में गुरुकुल हैं। तो शुरू से ही इनके ऊपर ये हुआ कि भाई इस बिरादरी को जो है अच्छा। फिर खट्टर साहब जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, वो भी करनाल से ही जीते, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि रोड़ों के ऊपर जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। छोटी बिरादरी है, छोटा जो बिरादरी होगी उसको अपने फोल्ड में लेना आसान हो जाएगा। तो अब विदेश में जो है ना ये जो रोड़ों के लड़के हैं, इनको सिखों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, और ये सिखों के खिलाफ मान लो झंडा उठा रहे हैं देशभक्ति का। और चलो भाई कोई देशभक्ति का झंडा उठा ले, लेकिन वो फिर पूरी हरियाणवी सोसाइटी का नाम ना ले, वो ये कहे जी हम रोड़ हैं और हम सिखों के खिलाफ हैं। एक्सपोज होके भी कोई आदमी आए तो भी हम मानेंगे भाई ईमानदार है, लेकिन वो ये कहेंगे वो मतलब कि अपने आप को जो उन्होंने आईडीज बना रखी है ना, वो भी जाटों के लड़कों के नाम की बना रखी है।
जे कोई हरियाणवी जिस तरीके ने उत्थे मंदिर गुरुद्वारा दा रौला पिया भी मंदिर ते हमला होया, जिस तरीके का भी नैरेटिव खड़ा किया गया, तो मान लो भी जे कोई भी हरियाणवी उस मसले के जाता सी तो उन्होंने नहीं सी जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के नाल हरियाणवी लोगों का ज हरियाणे के बसने ट्राइब्स का कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, अब जो रोड़ों के जो बच्चे हैं ना भाई साहब, वो अपने आप को जाट बना के कि भाई हम तो जाट हैं, अब पंजाब वालों को थोड़ा ना पता ये जाट हैं कौन है, तो या वो ये कह के जी हम तो हरियाणवी हैं। अब हरियाणा का मतलब तो लोग यही मानेंगे भाई जाट ही होंगे। तो इसमें जो ज्यादा जो भूमिका है ना वो रोड़ों की है, जो बाहर जो सिखों के खिलाफ माहौल खराब कर रहे हैं, इसमें बदनाम जाट हो रहे हैं।
हरियाणवी होने की मान लो कि डेफिनेशन होगी, अजकल असं फोन के उत्ते देखते हैं भी हरियाणवी होना, तो हरियाणवी लोगों की जी बोली है वो मिलती जुलती तुम बोली बोलन लग जाओ तो बंदे थोड़ा हरियाणवी समझ लैणगे, पर की हरियाणे के जी बोली का इको एक तरीका वरत्या जाता है, तो हरियाणवी होने की जी डेफिनेशन है वह की है भी सिर्फ बोली तो बंदे मापे जाते हैं, उन्हों मानतावान तो मापे जाते हैं, किमें मापे जाते हैं?
नहीं, बोली तो हरियाणा में भी अलग अलग तरीके की बोली है, कोई एक बोली नहीं है हरियाणा में। बांगरू है, बागड़ी है, देसवाड़ी है, और जो है फिर आपके साउथ हरियाणा में अलग है बोली जो अहीर बेल्ट है। तो हरियाणा में भी जो है ना बोली तो अलग अलग है। तो हरियाणा जो है ना एक बस शब्द एक प्रचलित हो गया है जी, कि जो और एक अलग आइडेंटिटी देने की हरियाणा को कोशिश की जा रही है, और इस आइडेंटिटी को पंजाब के साथ लड़वाने की कोशिश की जा रही है। आप एक चीज देखना कि आपको गाड़ियों के पीछे भी जैसे हरियाणा लिखा हुआ मिलेगा ना, तो जो आई है ना उसकी जगह हुक्का उन्होंने लोगों में लगा रखा होगा। तो ये जानबूझ के जो है ना हुक्के को भी एक तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई पंजाब के खिलाफ, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई सारे हरियाणा के लोग सुबह उठते ही हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जानबूझ के इस आइडेंटिटी को जानबूझ के मजबूती दी जा रही है कि हरियाणा को वो पंजाब के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अमित शाह ने भी ये कहा था कि भाई हरियाणा को जीतना जरूरी है। किस लिए जरूरी है? क्योंकि पंजाब को कंट्रोल करना है तो हरियाणा को जीतना जरूरी है। अब मान लो किसान बैठे हैं खनौरी बॉर्डर के ऊपर, अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो हमारे लिए सौखा हो जाता हरियाणा टप के दिल्ली तक पहुंचना, लेकिन अब नवी नवी सरकार बनी है हरियाणा में बीजेपी की, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हरियाणा को भी एंटी पंजाब की थीसिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंगना रनौत जैसे और भी जो लोग हैं हिमाचल में, उनके थ्रू जो है हिमाचल को भी एंटी पंजाब के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पंजाब को एक तरीके से घेरा जा रहा है। तो पंजाब हिमाचल का एक बुजुर्ग जो है, वो हम लोग हिमाचल में गए थे तो वो हमें मिला, उस बुजुर्ग ने ये कहा कि भाई जो है ना पंजाब को बचा लो। और वो जो बुजुर्ग था वो हिमाचली था, वो रोने लग गया ये बात कह के। तो हमने पूछा, मगा जी पंजाब को किस लिए बचा लो? बोला अगर पंजाब खत्म हो गया ना तो फिर हिमाचल भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये है कि पंजाब जो है ना वो तो एक बफर का काम कर रहा है ना, अदरवाइज तो सेंटर जो है वो सबको लपेट लेगा। जो सेंटर का रोड रोलर है वो सभी को, सारी जमीन को सपाट कर देगा, सारी जमीन को सीधा कर देगा। उसका मुकाबला कौन कर रहा है? उसका मुकाबला पंजाब कर रहा है, और पंजाब के साथ खड़ा होके उसका मुकाबला हरियाणा कर रहा है। तो ये दो ही स्टेट हैं जो पूरे इंडिया में लड़ रही हैं, और अगर पंजाब ही मान लो नुकसान हो गया पंजाब का, तो हिमाचल कहाँ बचेगा फिर? तो जिस हिमाचल का इस्तेमाल ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के खिलाफ किया जाए, अब जैसे हिमाचल में कोई पंजाब का आदमी जो है वो टूरिस्ट बन के जाए तो बीच में खबरें आती हैं भाई हिमाचलियों ने पंजाबियों को पीट दिया। अब वो ऐसा नहीं है कि हिमाचली पंजाबियों को पीट रहे हैं, वो तो नैरेटिव जो है वो वृत्तांत तो मीडिया सिरज रही है जिससे हिमाचलियों का भी नुकसान हो, पंजाब वालों का भी नुकसान हो। वो बेसिकली काम तो एजेंसियां करवा रही हैं। इसी तरीके से विदेशों में जो हरियाणवी लड़के पंजाब वालों के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं, वो काम तो बेसिकली एजेंसियों का है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे, अदरवाइज तो आप एक चीज बताओ, हरियाणा में कोई झगड़ा नहीं है हमारा, हरियाणा में हमारा भाईचारा है, और हरियाणा में हमारा इतना भाईचारा है कि हमने तो मुसलमानों के खिलाफ भी जो है अभी दंगों में शामिल नहीं हुआ हरियाणा, जो मेवों के खिलाफ इन्होंने दंगे करवाने की कोशिश की। अदरवाइज तो 47 में भी दंगे हुए, उसमें भी जाट इन्वॉल्व हुए, 84 में भी सिखों के खिलाफ दंगे हुए, उसमें भी जाट इन्वॉल्व हुए, 2013 में जो है वो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वो भी जाट मुस्लिम दंगा ही कहलाया।
मेरा यही सवाल होना
तो
सी
अब जब मुसलमानों के खिलाफ ही हम लोग नील लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में, उनके साथ ही हमारा भाईचारा है, तो सिख और हमारे में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो जब हरियाणा में सिख और जाट जो है या हरियाणवी सोसाइटी इतने प्रेम से रह रहे हैं, तो फिर ये अननेचुरल नहीं है कि फिर वो विदेश में लड़ रहे हैं? तो विदेश में लड़ने की दो वजह हैं। एक तो हरियाणवी जो नौजवान है वो अपने मूल से कट गए, क्योंकि दादा खेड़ा को तो ले जा नहीं सकते वहां पर। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश तो ऑस्ट्रेलिया में भी कर लो, इंग्लैंड में भी कर लो, कनाडा में भी कर लो, जो गांव का कल्चर है, जो पेंडू कल्चर है, वही हमें बाहरले देशों में भी मिल जाएगा। तो वो जो यूनिफॉर्मिटी है ना वो बरकरार रहेगी उस चीज की, अपने पूजा पद्धति की। लेकिन वहां हरियाणवी सोसाइटी में ये कंट्राडिक्शन है, तो इसकी वजह से कुछ हरियाणवी लड़कों को वो बाहरले देशों में बहकाने में कामयाब हो जाते हैं, एक चीज। और दूसरा ये है कि जो है इसमें एजेंसियों का भी रोल है कि जो ट्रेनिंग दे के लड़कों को भेज रही हैं। तीसरा जो है इसमें रोड़ों के लड़के हैं जो बेचारे जो है अपने जो सिद्धांत है उससे भटक गए, उनको भी जो है आना चाहिए, उनको भी भाईचारा समझना चाहिए कि वो भी हरियाणवी हैं, और उनका भी, उनकी भी 20% आबादी जो है सिखों की रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी आबादी जो है उसमें सिखिज्म का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन उन पर एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा किए हैं ब्राह्मण्स ने जो है उनको एंटी सिख करने के लिए। एक्सपेरिमेंट जाटों के ऊपर भी बहुत किए, जैसे 1875 में आर्य समाज बनाया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जाटों को भी जाट जी का, जाटों को भी जो मेन धारा थी उसको तोड़ के जो है हिंदुत्व के फोल्ड में आर्य समाज लेकर आया। लेकिन जाट एक बड़ी कम्युनिटी होगी, उसको पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई ये। रोड एक छोटी कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी को कंट्रोल करना आसान हो जाता है।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ?
ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ, ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਵੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਜੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਬਚਾਣੇ ਮੇਂ ਵੀ ਜੱਟੋਂ ਕਾ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹਮਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸਮੇਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਜਾਟ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਟੋਂ ਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਕਮ ਹੁਆ, ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਹਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਹਮਕੋ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਇਨ ਲੋਗੋ ਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਪ ਦੇਖੇ ਵੈਸਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੀ ਪਛਾਦੇ ਜੱਟੋਂ ਕੀ, ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜਬ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਥੇ, ਜਬ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਆ ਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਥੀ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਫੌਜ ਆਈ ਥੀ ਵੋ ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਮੇਂ ਬਸ ਗਈ ਥੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਰਾਈ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਆਪਕੇ ਪਛਾਦੇ ਜੱਟੋਂ ਕੀ, ਅਬ ਵੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਕੇ ਫੋਲਡ ਮੇਂ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੋ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਭਾਈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੋ ਅਗਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਪਾਤੇ, ਜੱਟੋਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਪਾਤੇ ਜਾਂ ਪਛਾਦੇ ਜੱਟੋਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਪਾਤੇ ਹਮ ਲੋਕ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਥੇ। ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਜੱਟੋਂ ਕੀ ਤੋ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ, ਹਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੜੇਗਾ।
ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ?
ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੋ 84 ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਈਕੀ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਈਕੀ ਕੇ ਉੱਪਰ 84 ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਡਾਲਾ ਹੈ, ਇਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਸਰ ਮੇਂ ਹੀ ਹਮਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਵੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹਮ ਉਸਸੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹਮਕੋ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਮੇਂ 84 ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਰ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਮੇਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਮੇਂ ਵਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਿਸਲੋਂਗੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਥੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੇ ਸਿੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੋ ਮਿਸਲੋਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਰੂਲ ਕੀਆ, ਵੋ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਥੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ, ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਥੀ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਹੋਗਾ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮਾਨੇਗੀ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰ ਮਾਨੇਗੀ। ਔਰ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇਂ, ਵੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋ ਫਤਿਹ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ, ਤੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹਮਕੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਂ ਏਕ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਜੱਟੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਵੈਸਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ मुसलमान है, तराई की बेल्ट में जहाँ सिख जाता है वहाँ मुसलमान है। तो मुसलमान जो है वो सिखों के साथ अलाई होने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हम उनको भी न्योता दें। और फिर मिसलों के टाइम पे मुसलमान भी सिखों के पीछे खड़े हुए थे, महाराजा रणजीत सिंह के पीछे मुसलमान भी खड़े हुए थे। तो इस वजह से जो हमारे नेचुरल अलाइज हैं उनको हम लोग पहचानें। और 84 में जो सिखों का जो होलोकास्ट हुआ, जो कत्ले आम हुआ, उसके जो दंश है उसका, उससे भी थोड़ा सा बाहर आकर हम लोग एक बार दोबारा से देखना शुरू करेंगे ना, तो हमें पॉजिटिविटी भी बहुत नज़र आएगी, जिसमें इंडिया के बहुत लोग हैं जो सिखों के साथ मिलके चलने के लिए तैयार हैं, सिखों के पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं राजस्थान में गया भाई साहब, इंटीरियर में गया मैं राजस्थान में, तो वहाँ लोग आए, वो मेरे पाँव छूने लग गए, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार बुजुर्ग आदमी हैं, पाँव क्यों मेरे छू रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी आपका जो भेस है ना, आप सिख हो, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो माने इंडिया के अंदर सिखों को नहीं पता, मतलब हाथी को नहीं पता होता ना भाई उसकी ताकत क्या है। तो इसी तरीके से सिखों को भी अपनी जो असल ताकत है कि जो गांव का आदमी है, शहरी फिनोमिना अलग है, शहर में मीडिया का फिनोमिना अलग है, लेकिन जो गांव का देहाती आदमी है वो सिखों के प्रति क्या मतलब कि पॉजिटिविटी और एक जो प्रेम रखता है, वो हम लोग जो है समझ जाएंगे। अब मैं तो क्योंकि घूमता रहता हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि भाई सिखों के प्रति प्रेम बहुत और संभावना बहुत है। अब इस बारे में हमको जो है ना इकट्ठे हो गए वहाँ काम करने की ज़रूरत है। हमको अपने इंटीरियर जो रिफ्ट हैं सिखों के, उनको ख़त्म करके केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अगुवाई में हमको हउमे को छोड़ के और वहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि इसके नतीजे आएंगे।
जिथे जिथे सिखी जाऊगी उत्थे उत्थे जिहड़ा सिखी दा सिद्धांत है, सिख राज दा, हलीमी राज दा, उहदी भी गल जाऊगी। तां तुसीं हलीमी राज तों, सिख राज तों तुसीं की समझदे हो? मेरा आखिरी सवाल है तुहानूं इह।
देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ सिखी जाएगी, जहाँ सिद्धांत जाएगा सिखी का, वहाँ हलीमी राज का सिद्धांत जाएगा। हम लोग तो ये मानते हैं भाई हम आज भी राज में हैं, आज हमारा राज जो है वो अप्रकट है, कल हमारा राज प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज राज में नहीं, हम तो आज भी अपने आप को राजा ही महसूस करते हैं। जब हमने दस्तार सजा ली तो हम राज्य हो गए महाराज जी की कृपा से भाई साहब। तो सिखी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ सोवर्निटी का सिद्धांत जाएगा, क्योंकि दस्तार महाराज जी ने हमें ऐसा जो है हमें दे रखा है वरदान कि जो आदमी दस्तार बांध लेगा ना, जो दस्तार सजा लेगा, जो पगड़ी बांध लेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक राज की संकल्पना, एक राज की जो फिनोमिना है उसके अंदर नेचुरली उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो और वो फिर जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े होने की भी स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर पैदा होगी। तो आपकी बात ठीक है कि जहाँ जहाँ सिखी जाएगी वहाँ हलीमी राज का सिद्धांत जाएगा और वहाँ वहाँ लोग जो हैं वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी
तो गलबात की है मनोज सिंह दूहन जी के नाल, जिन्होंने दसिया है कि पंजाब तो बाहर किमें सिखी प्रफुल्लित हो रही है, किमें हरियाणे दे विच सिखी लैके लंबे समय तो सदियों तो लोगों का रुझान सी ते जिहड़ा हुण भी बनिया होया ते अगे वधदा जा रहा है, ते पूरा भारत सिखां दी अगवाई कबूलण नूं जिहड़ा तैयार खड़ा है। भारत का खास तौर दे उत्ते ओह एरिया, पेंडू एरिया, देहाती एरिया बिल्कुल जिहड़ा है उह सिखां दे अलायंस बन के अगे सिखां दे नाल कम कर सकदे ने। बहुत सारियां संभावनावां ने जिहड़ियां सिखां नूं समझण दी लोड़ है, उह उहनां ने साडे नाल सांझियां कीतियां ने। उम्मीद करते हैं कि तुहानूं इह गल्लबात पसंद आई होवेगी। हुण मैनूं अमदीप सिंह नूं दे इजाजत, तुसीं बने रहो सिख सियासत दे नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।